नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के आज 7 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत के कारण देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही है। प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता मोहन लाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा आज से शुरू होगी। वैश्विक संघर्ष और फिलिस्तीन देश को मान्यता मुख्य मुद्दों में शामिल। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का कामरूप जिले में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोलकाता में रात भर हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। बिजली का करंट लगने से 5 लोगों की मौत। मेयर ने निवासियों से घर में ही रहने का आग्रह किया। और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम सुपर फोर में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। सितंबर 2018 में रांची से शुरू की गई यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना से देश की स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इससे 55 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वस्थ भारत विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की कुंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान भारत के कारण देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति आ रही है। इस योजना के 7 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने दिखाया है कि कैसे क्षमता, करुणा और तकनीक मानव सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख आयुष्मान भारत एक वायदे से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए एक जन आंदोलन तक का साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह परिवर्तन प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार के संकल्प का प्रमाण है और देश कितना आगे पहुंच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ बताया। आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के स्टार्टअप तंत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। भारत की युवा शक्ति पर जोर देते हुए श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 3 वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान कर रही है। इस अवसर पर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को बहुप्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे कल्याणकारी उपायों, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र को मजबूत किया है।
अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है तो चिंता ना करें, प्रधानमंत्री आपकी गारंटी लेंगे। यह प्रधानमंत्री के आश्वासन भरे शब्द थे जो उन्होंने पिछले साल पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहे थे।
जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है।
जीडीपी में लगभग 45% योगदान के साथ अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराती है और इसमें डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक जैसे फीचर्स हैं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए जून 2020 में शुरू की गई इस योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जालंधर के एक वेंडर ने बताया कि इस योजना ने उनके बिजनेस को कैसे मदद की।
मैं कपड़े का काम करता हूं, तो बाकी मेरे को पता चला था कि आई है 10,000 रूपए लोन की काम के बढ़ोतरी के लिए, तो मैंने यूको बैंक में गया तो मैंने बात किया तो उन्होंने बहुत आसानी से लोन दे दिया मेरे को, मेरे काम में लगाया, काम बढ़ोतरी हो रहा है। बाकी मोदी जी के अच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद है।
ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लक्षित तरीके से लागू करने में मदद करता है। इस पोर्टल को अन्य सुविधाओं से जोड़ा गया है जो उपयुक्त नौकरी के अवसर, कौशल विकास के अवसर खोजने और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें भारत सरकार 50% योगदान देती है और बाकी योगदान श्रमिक द्वारा किया जाता है। मोदी सरकार के विभिन्न पहले लाभ पहुंचाने में आने वाली कमियों को दूर कर रही है जिससे श्रमिकों को लाभ, ऋण और प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित हो सके और इससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा भी मिले।
लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का आज असम के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। इस दौरान पुजारियों ने मंत्रोच्चार किया और प्रशंसकों ने उनके गीत गाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा आज शुरू होगी। इस सत्र के विश्व के नेता न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए हैं। इस सत्र में गाजा और यूक्रेन के युद्ध तथा फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में बढ़ती पश्चिमी मान्यता का मुद्दा चर्चा के मुख्य रूप से रह सकता है। इस वर्ष का विषय एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक है। रेल मंत्रालय ने पंजाब के फिरोजपुर छावनी से दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वर्तमान में पंजाब में 5 वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही है जो राज्य के 7 जिलों में जाती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में रात भर हुई तेज बारिश के कारण कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में हुए जलभराव के करंट फैलने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी सहायता वाले और सरकारी स्कूलों के लिए बुधवार तक बृहस्पतिवार को आवश्यक की घोषणा की है। इस बीच मेयर ने निवासियों से घर में ही रहने का आग्रह किया है। भारत का अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में कल से लागू किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक बड़ा कदम है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके ये सुधार लोगों को काफी राहत प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया है। लोगों को प्रत्यक्ष बचत का लाभ देने के लिए सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर कर कम कर दिए गए हैं, जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग क्रीम जैसे उत्पादों पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, छेना, रोटी और पराठों पर जीएसटी कर पूरी तरह से हटा दिया गया है। नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी गई है, जो पहले 12% वाले स्लैब का हिस्सा था। वहीं रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, डायपर और सिलाई मशीन जैसे अन्य घरेलू जरूरत की चीजों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली निवासी पूजा ने नए जीएसटी सुधारों पर खुशी जताते हुए सरकार के फैसले की सराहना की।
मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने रोज की जरूरतों की हमारी चीजें जो भी सस्ती हुई है उससे हमें बहुत राहत मिली है और त्योहार भी आने हैं तो उसमें भी हमारे बजट पर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा हम लोगों को और इसलिए हम मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
जीएसटी परिषद का यह निर्णय सीधे तौर पर परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम कर रहा है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाकर उन्हें मजबूत करेगा। शिवान के साथ नितिका गुप्ता।
एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर चरण में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। यह मैच संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धोखे धारी और धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज पूछताछ कर रहा है। शिखर धवन, सुरेश रैना और रॉबिन उत्तप्पा के बाद इस मामले में पूछताछ का सामना करने वाले ये चौथे क्रिकेटर हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस प्रकार के मैचों के विरुद्ध व्यापक जांच के हिस्से के रूप में सट्टेबाजी ऐप के परिचालन की जांच कर रहा है। इन मैचों पर असंख्य लोगों और निवेशकों के करोड़ों रुपए ठगे जाने का आरोप है। इन मंचों पर प्रत्येक और अप्रत्यक्ष करों की कथित चोरी का भी आरोप लगाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।